यूनाइटेड नेशंस रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 19 फरवरी 2021 के बुलेटिन की हेडलाइंस। मानवता की खुशहाली और वजूद के लिए पृथ्वी के साथ समरसता का रिश्ता बनाना बेहद अहम, कहा यूएन प्रमुख ने। कोविड-19 वैक्सीन के न्यायोचित वितरण पर जोर, यूनिसेफ का वैक्सीन वितरण के लिए प्रमुख एयरलाइंस के साथ समझौता। स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों की चिंता, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने और नए कानून लागू होने से मुसलमानों व अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की राजनीतिक भागीदारी घटने की आशंका। और महाराष्ट्र के एक अध्यापक रंजीत सिंह डिसले ने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनाए अनोखे तरीके, उन्हें मिला वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। सुनिएगा एक इंटरव्यू। हम आपको याद दिलाते चलें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने प्रकृति के साथ समरसता पूर्ण रिश्ते स्थापित किए जाने की अहमियत को रेखांकित करते हुए आगाह किया है कि प्रकृति के बिना मानवता का फलना फूलना या बच पाना संभव नहीं है। यूएन प्रमुख ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की नई रिपोर्ट मेकिंग पीस विद नेचर पेश करते हुए प्रकृति को देखने के नज़रिए में बदलाव लाने और नई दृष्टि के साथ पर्यावरण संरक्षण व बहाली उपायों में निवेश किए जाने की पुकार लगाई है। यूएन प्रमुख ने गुरुवार को एक वर्चुअल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा,
आई वॉन्ट टू बी क्लियर, विदाउट नेचर्स हेल्प वी विल नॉट थ्राइव और इवन सर्वाइव, एंड फॉर टू लॉन्ग वी हैव बीन वेजिंग अ सेंसलेस एंड सुसाइडल वॉर ऑन नेचर।
यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि हम लंबे समय से प्रकृति के साथ एक निरर्थक व आत्मघाती युद्ध लड़ रहे हैं। हमें अपनी तमाम नीतियों, योजनाओं और आर्थिक प्रणालियों में प्रकृति की असली अहमियत को समझना व दर्शाना होगा। एक नई सतर्कता के साथ हम ऐसी नीतियों व गतिविधियों में निवेश बढ़ा सकते हैं जो प्रकृति को बहाल करने के साथ साथ उसकी हिफाजत करें, और ऐसा करने के असीम लाभ होंगे। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने कहा कि जलवायु व्यवधानों, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण के कारण मानवता पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और इन समस्याओं की वजह अव्यावहारिक उत्पादन और खपत है। मानवता का कल्याण पृथ्वी के स्वास्थ्य की रक्षा करने में निहित है। यूएन पर्यावरण एजेंसी की नई रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के खोने और प्रदूषण से उपजे संकट का सामना किया जा सकता है, लेकिन आपस में जुड़े इन संकटों से निपटने के लिए व्यापक समाज के स्तर पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने शुक्रवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए आगाह किया कि विश्व के समक्ष जलवायु, स्वास्थ्य, आर्थिक विषमता सहित अन्य चुनौतियां पहले से ज्यादा जटिल और विकराल होती जा रही हैं, जिनका सामना एकजुटता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए ही किया जा सकता है। यूएन प्रमुख ने चार अहम क्षेत्रों में कार्रवाई का खाका पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2021 में दुनिया को फिर से टिकाऊ विकास के मार्ग पर लौटना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडिनोम गेब्रियसिस ने कहा है कि वैक्सीनों का न्यायोचित वितरण न केवल सही है बल्कि अकलमंदी भरा कदम भी है। यूएन प्रमुख ने शुक्रवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। वहीं यूनिसेफ ने कोविड-19 पर जवाबी कार्रवाई के तहत जरूरी दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और त्वरित वैक्सीन वितरण को प्राथमिकता देने के इरादे से अग्रणी विमान कंपनियों के साथ समझौते किए हैं। कोविड-19 से जुड़ी कुछ खबरों के साथ सचिन गौड़।
यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने शुक्रवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए वैक्सीनों के न्यायसंगत वितरण की आवश्यकता को दोहराया।
Vaccine equity is not just the right thing to do, it's also the smart thing to do. The longer it takes to suppress the virus everywhere.
वैक्सीनों का न्यायोचित वितरण सही होने के साथ साथ स्मार्ट भी है। दुनिया में हर जगह वायरस पर काबू पाने में जितना समय लगेगा उससे वायरस को अपना रूप बदलने और वैक्सीनों को बेअसर करने का समय मिल जाएगा। यूएन एजेंसी प्रमुख ने आगाह किया है कि फिलहाल पहले से कहीं ज्यादा संख्या में वैक्सीनों का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन सीमित संख्या में उपलब्ध होने की वजह से उन्हें असरदार ढंग से इस्तेमाल में लाया जाना होगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने कोविड 19 पर जवाबी कार्रवाई के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत जरूरी दवाओं, मेडिकल उपकरणों और त्वरित वैक्सीन वितरण को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए 10 से ज्यादा अग्रणी विमान कंपनियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विमान कंपनियां 100 से ज्यादा देशों में मेडिकल सामग्री पहुंचाने में मदद करेंगी। दवाओं, वैक्सीनों और उपकरणों की जीवन रक्षक आपूर्ति को प्राथमिकता दिए जाने के अलावा विमान कंपनियां तापमान नियंत्रण और सुरक्षा उपायों का भी ख्याल रखेंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड 19 महामारी से बचाव के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के 2 संस्करणों को आपात इस्तेमाल सूची में शामिल किए जाने को मंजूरी दे दी है। इन वैक्सीनों को कोरिया गणराज्य में एसके बायो कंपनी और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। दोनों कंपनियां एक ही वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं, लेकिन अलग अलग उत्पादन संयंत्रों में निर्मित होने की वजह से दोनों वैक्सीनों की समीक्षा की गई और उसके बाद ही उन्हें मंजूरी मिली है। आपात इस्तेमाल सूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया के तहत वैक्सीनों की गुणवत्ता, सुरक्षा और कारगरता की जांच की जाती है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने ध्यान दिलाया है कि मानवता, पशुओं और पारिस्थितिकी तंत्रों के स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है। कोविड 19 से हरित और स्वस्थ पुनर्बहाली के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें पर्यावरण के साथ बेहतर संबंधों के लिए वन हेल्थ पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। वन हेल्थ के सिद्धांत से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जहां बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य नतीजों को पाने के लिए विभिन्न सेक्टर एक साथ मिलकर प्रयास और संवाद करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की स्वायत्तता समाप्त किए जाने और नए कानून लागू किए जाने से मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों की राजनीतिक भागीदारी का स्तर घटने की आशंका है। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने गुरुवार को जारी अपने वक्तव्य में भारत सरकार से राज्य की जनता के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना मूल रूप में विशिष्ट स्वायत्तता के दर्जे के साथ की गई थी, जिसका उद्देश्य स्थानीय जनता की जातीय, भाषाई और धार्मिक पहचान का सम्मान व उसकी गारंटी सुनिश्चित करना था। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य है और संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत उसे विशेष दर्जा प्राप्त था। अल्पसंख्यक मामलों पर विशेष रिपोर्टर फरनान डे वेरेनेस और धर्म या आस्था की आज़ादी पर विशेष रिपोर्टर अहमद शहीद ने कहा कि भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एकतरफा निर्णय लेते हुए विचार विमर्श किए बिना ही जम्मू और कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा खत्म कर दिया था। यूएन विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि नए हालात में रोजगार, भूमि स्वामित्व सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होने का जोखिम है। स्वायत्तता का खत्म होना और नई दिल्ली स्थित संघीय सरकार का सीधा शासन थोपा जाना दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की अब अपनी सरकार नहीं है और उनकी इस क्षेत्र में ऐसे कानून तैयार करने या उनमें संशोधन करने की शक्ति छिन गई है जिनसे अल्पसंख्यकों के रूप में उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होती हो। यूएन विशेषज्ञों ने बताया कि विशेष संवैधानिक दर्जे के तहत उस क्षेत्र के लोगों को दिए गए संरक्षण को मई 2020 में तथा कथित निवास स्थान संबंधी यानी डोमिसाइल नियमों को मंजूरी देकर वापस ले लिया गया था। भूमि कानूनों में हुए बदलाव इन संरक्षणों को और भी कमजोर बना रहे हैं। मानवाधिकार विशेषज्ञों के अनुसार नए कानून लागू होने से वो पुराने कानून निरस्त हो गए हैं जिनमें कश्मीरी मुस्लिम, डोगरी, गुज्जर, पहाड़ी, सिख, लद्दाखी और अन्य अल्पसंख्यकों को संपत्ति खरीदने, भूमि स्वामित्व और राज्य में रोजगार के लिए अधिकार हासिल थे। स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि इन कानूनी बदलावों से पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के बाहर के स्थायी निवासियों के लिए क्षेत्र में आकर बसने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इससे क्षेत्र की जनसांख्यिकी पर असर पड़ने और अल्पसंख्यकों द्वारा प्रभावी ढंग से अपने मानवाधिकारों का इस्तेमाल करने की क्षमता कमजोर होगी। लगभग एक दशक पुराने हिंसक संघर्ष से पीड़ित सीरिया में कुल आबादी का लगभग 60% हिस्सा यानी लगभग 1,24,00,000 लोग खाद्य असुरक्षा के शिकार हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि देश में पिछले एक वर्ष में बुनियादी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 250% की बढ़ोतरी हुई है और हालात ऐसे ही रहे तो वर्ष 2021 में बहुत से परिवारों के लिए पर्याप्त भोजन का इंतजाम कर पाना मुश्किल होगा। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
विश्व खाद्य कार्यक्रम और उसके साझेदार संगठनों ने इस रिपोर्ट में सीरिया में खाद्य सुरक्षा और आजीविका संबंधी हालात की समीक्षा की है। UN एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार एक वर्ष में 45,00,000 अतिरिक्त सीरियाई नागरिक खाद्य असुरक्षा के गर्त में धंसे हैं। कोरोना वायरस संकट के दौरान रोजगारों के खत्म होने, आर्थिक चुनौतियों के बढ़ने और खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण पहले से ही विस्थापन और हताशा का शिकार सीरियाई नागरिक बेहद कठिन हालात में गुजारा कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो गई है। चिंता जताई गई है कि सीरिया में सामान्य आहार भी आम परिवारों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। इस रिपोर्ट के तहत उन लोगों की संख्या का भी अनुमान लगाया गया है जो गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षा का शिकार हैं, यानी जिन्हें गुजारे के लिए भोजन सहायता की आवश्यकता है। रिपोर्ट बताती है कि ऐसे लोगों की संख्या पिछले एक वर्ष में 2 गुनी होकर 13,00,000 हो गई है और तत्काल कार्रवाई के अभाव में अतिरिक्त 18,00,000 लोगों के गंभीर खाद्य असुरक्षा का शिकार होने का खतरा है। पिछले एक वर्ष में सीरिया में बुनियादी खाद्य वस्तुओं के दामों में 236% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि देश की मुद्रा सीरियाई पाउंड तेजी से लुढ़की है। अपना गुजारा चलाने और बच्चों का पेट भरने के लिए अभिभावकों को कठिन निर्णय करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वे कम भोजन खा रहे हैं, कर्ज के बोझ में दब रहे हैं और आय के इंतजाम के लिए मजबूरी में अपने संपत्तियों और मवेशियों को बेच रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम हर महीने सीरिया में 50,00,000 सबसे जरूरतमंद लोगों को खाद्य सहायता मुहैया कराता है और इनमें से अधिकांश लोगों के लिए भोजन का यही एकमात्र सहारा है। UN एजेंसी ने कहा है कि सीरिया में मानवीय राहत जरूरतों को पूरा करने के लिए जुलाई 2021 तक $37 करोड़ से ज्यादा की धनराशि की आवश्यकता होगी।
अफगानिस्तान में हाल के वर्षों में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों पर हमलों और उनके मारे जाने की घटनाओं में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि वर्ष 2018 से अब तक देश में 65 पत्रकार, मीडिया कर्मी और मानवाधिकार कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। सितंबर 2020 में अफगान शांति प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से 31 जनवरी 2021 तक कम से कम 11 मानवाधिकार कार्यकर्ता और मीडिया कर्मी लक्षित हमलों में मारे गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
इस रिपोर्ट में 1 जनवरी 2018 से 31 जनवरी 2021 तक की घटनाओं की पड़ताल की गई है। हमलों के जारी रहने और किसी भी पक्ष द्वारा इन घटनाओं की जिम्मेदारी का दावा ना किए जाने से स्थानीय आबादी में भय का माहौल पैदा हो गया है। बड़ी संख्या में लोग अपने कामकाज में अपनी आवाज को स्वतः ही दबाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वे अपनी नौकरियों को छोड़ रहे हैं और सुरक्षा की तलाश में घर, समुदायों व देश को छोड़कर जा रहे हैं। UN मिशन की रिपोर्ट Killings of Human Rights Defender and Media Professionals बताती है कि हमलों के तरीकों में बदलाव आया है और हाल के समय में ये हमले जानबूझकर सुनियोजित ढंग से निशाना बनाकर किए गए हैं। नई रिपोर्ट में सभी पक्षों से ऐसी घटनाओं को रोकने, जवाबदेही को बढ़ावा देने और दंड मुक्ति की भावना पर अंकुश लगाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। साथ ही आगाह किया गया है कि ऐसे मामलों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी जांच और कानून की तय प्रक्रिया के तहत न्यायिक कार्रवाई की जानी होगी। इस रिपोर्ट में सरकार से ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए पर्याप्त उपायों को लागू किए जाने की सिफारिश की गई है। इसके तहत मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को खतरे व डराए धमकाए जाने से सुरक्षा प्रदान करने सहित अन्य विशेष संरक्षा उपायों पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में तालिबान से आग्रह किया गया है कि ऐसी नीतियों को अपनाया, प्रचारित व लागू किया जाना होगा जिनमें मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों व मीडिया कर्मियों को निशाना बनाए जाने पर पाबंदी हो। साथ ही ऐसी नीतियों को खारिज किया जाना होगा जिनसे नागरिक समाज के लिए स्थान सिकुड़ता हो। रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई है कि जोखिम का सामना कर रहे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के लिए समर्थन को बढ़ाया जाना होगा।
वैश्विक अध्यापक पुरस्कार 2020 के विजेता रंजीत सिंह डिसले का कहना है कि दुनिया को 21वीं सदी के शिक्षकों की आवश्यकता है और जीवन में टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका के मद्देनज़र शिक्षकों को भी कक्षाओं में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। भारत में महाराष्ट्र प्रदेश के सोलापुर जिले के परितेवाड़ी गांव में सरकारी स्कूल में अध्यापक रंजीत सिंह डिसले को शिक्षा से परे जाकर समाज में बदलाव लाने की उनकी कोशिशों के लिए ब्रिटेन में वर्क फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने हाल ही में पुरस्कृत किया है। इस पुरस्कार के लिए 140 से अधिक देशों के 12,000 से अधिक शिक्षक नामांकित किए गए थे। रंजीत सिंह डिसले ने परिवर्तन लाने के लिए नई भाषा सीखी, छात्रों को शिक्षा में मदद करने के लिए डिजिटल तकनीक इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढे और ख़ास तौर पर लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए असीम प्रयास किए। हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने उनकी इस असाधारण शिक्षा मुहिम के बारे में बातचीत की।
शिक्षक के रूप में आपका सफर कैसे शुरू हुआ और आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, अपनी कहानी बताइए हमें।
आपको अगर सच में बताऊं तो मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं एक टीचर बन जाऊंगा। मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं एक आईटी इंजीनियर बन जाऊं। बचपन से ही मुझे टेक्नोलॉजी से काफी लगाव था और मैं टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ ना कुछ बातें किया करता था, कुछ ना कुछ इनोवेशन करता रहता था। तो आईटी इंजीनियर जो था ये मेरा पहला, सबसे पहला और बहुत सालों तक मैंने दिल में रखा हुआ सपना था, मगर कुछ दुर्भाग्यवश वो मैं पूरा नहीं कर पाया। मेरे पिताजी जो हैं वो उन्होंने मुझे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिल करने के लिए एडवाइस किया, सलाह दी थी। तो वहाँ के जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में जो टीचर्स थे उन्होंने मेरे में काफ़ी बदलाव लाए। तो वो एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने ही सोचा अगर मुझे इतना एक्सपीरियंस हुआ है तो क्यों ना मैं बाकी लोगों को भी ये एक्सपीरियंस दे और उनकी लाइफ जो है चेंज करूं।
किस तरह की चुनौतियां सामने आई और क्या कभी ऐसे क्षण आए जब सब कुछ छोड़ देने का मन किया हो?
सबसे बड़ी चुनौतियां थी कि पेरेंट्स का अनअवेयरनेस शिक्षा के प्रति, उनका कोई भी मतलब उसको मालूम ही नहीं था कि क्या चेंजेस वो ला सकते हैं, तो वो अवेयरनेस क्रिएट करना। सेकंड था अटेंडेंस बच्चों, क्योंकि क्लासरूम का स्टेटस देख के, सिनारियो देख के कोई भी वहां पे पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो वो अटेंडेंस ये भी मेरे लिए काफी बड़ी समस्या थी। और तीसरा था स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, जहाँ पे उनको एनुअल टेस्ट होते थे, उनका इवैल्यूएशन होता था, तो उस दौरान भी बच्चों का परफॉर्मेंस काफी लो था।
मोस्ट एक्सेप्शनल एजुकेटर, एक शिक्षक जो खाली शिक्षा नहीं दे रहा था बल्कि शिक्षा से आगे बढ़कर समाज में बदलाव ला रहा था, तो वो कौन से काम है, अगर आप हमें कुछ उदाहरण दे सकें, वो कौन से काम है जिनको लेकर आपको ये सम्मान मिला है और किस तरह से उस उन कार्यों के जरिए आपने उस इलाके में बदलाव लाए हैं?
तो जैसे मैं 2009 में वहां पे गया था, तो जहाँ पे जिस दिन मैंने देखा था कि लड़कियों की शिक्षा काफी अहमियत दी नहीं जाती थी, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये लड़कियों की शिक्षा के लिए पेरेंट्स में कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो मैं बाहर के गांव की, दूसरे गांव की या सिटीज की लड़कियां जो शिक्षित होके, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस है, तो उनको मेरे स्कूल में इन्वाइट करता था और पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन प्रोग्राम रखता था और वो लड़कियां अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहती थी। तो उन्होंने पेरेंट्स के सामने एक रोल मॉडल की तरफ पेश आ गई और पेरेंट्स को मैं बताता रहा अगर ये लड़की कर सकती है तो आपकी क्यों नहीं कर सकती है। और फिर मैं कह रहा लड़कियों का और बच्चों का अटेंडेंस स्कूल में ज्यादा बढ़ाने के लिए आई थॉट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो मैंने एक लैपटॉप खरीदा उस वक्त और वो लैपटॉप लेके मैं स्कूल में जाता था और फिर सबको हम क्या करते थे, हम लैपटॉप पे मूवीज देखते थे, गाने देखते थे, डांस करते रहते थे, तो हम क्लास में पूरा इंजॉय करते रहते थे। तो जो स्कूल में नहीं आते थे उनको भी उनके दिमाग में चलने लगा, मेरा दोस्त स्कूल में जाके इतना आनंद उठा रहा है तो मैं यहाँ कितना कष्ट उठा रहा हूँ, तो इससे तो बेहतर है मैं स्कूल में जाऊं और वहां पे इंजॉय करूं। वो धीरे धीरे अटेंडेंस बढ़ती रही। अब जब बच्चे और लड़कियां स्कूल में आने लगी तो अब मुझे वो एंटरटेनमेंट की जगह एजुटेनमेंट में बदलनी थी, और उसी को ध्यान में रखते हैं मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए स्कूल के लेसन के ऊपर, मेरे खुद के वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए और बाकी कुछ यूट्यूब से लाए, उसमें मैंने खुद का वॉइस ओवर दिया और ऐसा डिजिटल कंटेंट मैं बच्चों के साथ शेयर करता रहा। उनके माता पिता के मोबाइल्स के थ्रू वो शेयर करते थे। तो जब एक दिन मैं एक दुकान में गया तो जहां पे मैंने देखा कि उस शॉपकीपर ने दुकानदार ने प्रोडक्ट के ऊपर का एक कोड स्कैन किया और जिससे उसका प्राइस और डिटेल स्क्रीन के ऊपर आया, तो वही क्षण मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि क्या ये हम शिक्षा में भी कर सकते हैं क्या। तो असल में जो मैंने डिजिटल कंटेंट बनाया था वो अब मैंने उस QR कोड में एम्बेड किया और वो फिर ये 27 QR कोड जो है ना QR कोड ये मैंने स्टिकर पेजेस पे प्रिंट किए और वो बच्चों के पेजेस टेक्स्ट बुक के हर एक पेज के ऊपर वो चिपका है। अब बच्चों को सिर्फ उसको स्कैन करना था और कंटिन्यू करना था एजुकेशन। अब बच्चे घर बैठे भी अपनी शिक्षा कंटिन्यू कर सकते थे। भविष्य जो है वो टेक्नोलॉजी के हाथ में है, तो टीचर्स ने भविष्य को देखते हुए टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में शिक्षा में इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने होंगे और खुद को उसके लिए एक सक्षम टीचर बनाना होगा, तभी हम जाके 21वें सदी के टीचर्स बन सकते हैं।
इस इंटरव्यू का विस्तृत संस्करण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, पता है news.un.org/hi। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अब महबूब खान को अनुमति।